रैपिड क्लास से बात है। 23 अप्रैल 1967 पहली पीठ के मध्यार्ध में बात कर रही थी। अभी तुम बच्चों को चक्र का मालूम हो गया और ये भी मालूम हुआ कि बाबा आया हुआ है। सब आत्माएं वापस जानी है। सतयुग में जो देवी देवताएं थे वो ही आकर के फिर राजभाग करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बीज से टारटारियां निकलती हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, कितना बड़ा झाड़ है और छोटे छोटे मठपंत कितने हैं। तुम ये भी जानते हो कि ये नया झाड़ फिर बहुत छोटा हो जाएगा। मीठे पानी की नदियों के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तो नदियां भी खारा पानी बहाती हैं, फिर मीठी नदियों के किनारे महल होंगे, बगीचे बड़े बड़े होंगे और खेती भी होगी। तो अब स्थापना हो रही है, कैसे फिर पालना होगी, कैसे झाड़ वृद्धि को पालेगा, अंत में फिर बाप आएंगे। तो ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी और चक्रवर्ती बनते हो। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र अच्छी रीति बैठ जाता है। हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो तुमको कितना भड़ा भारी नशा रहता है। भगवान इस शरीर द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ये भी स्टूडेंट है और पढ़ाने वाला वो है। नॉलेज फुल ज्ञान का सागर भी वो है। ये स्टूडेंट है कौन?
ब्रह्मा।
वो नॉलेज फुल है और ये स्टूडेंट है। वो ज्ञान का सागर है और ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ब्रह्मा को कोई ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है तो क्या है?
स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है।
स्टूडेंट तो है, सागर नहीं है तो क्या है? नदी है, पोखरा है, क्या है?
नदी
ये खुद कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता था। मैं इस समय ब्रह्मा के तन में पढ़ाता हूँ, इनकी आत्मा भी सुनती है, मंथन भी करती है। तो तुम बच्चे हमेशा समझो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा हमको नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा को याद करने से तुमको फायदा बहुत होगा। तुम्हारी आयु बढ़ेगी इनको याद करने से। शिव बाबा को याद करने से आयु बढ़ेगी, इनको याद करने से
आयु कम
आयु बढ़ेगी नहीं। देवताओं की आयु बड़ी होती है और ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। देवताएं तो पवित्र होते हैं, मनुष्य भोगी होते हैं, तो जो त्रिमूर्ति दिखाई है इनमें मनुष्य कौन है और देवता कौन है? देवता है विष्णु और शंकर को देवता कहा जाता है और ब्रह्मा को मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है। दाढ़ी मूंछ वाला जो भोगी मनुष्य होते हैं वो अपवित्र होते हैं, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी आयु भी छोटी होती है। जो जो भोगी बनते जाते हैं त्यों त्यों आयु छोटी होती जाती है। देवताओं को भी योगी नहीं कहेंगे, मनुष्यों को भी योगी नहीं कहेंगे, भोगी कहेंगे, और देवताओं को भोगी नहीं कहेंगे, योगी भी नहीं कहेंगे। तो क्या है, देवता योगी भी नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है कि हमको किससे योग लगाना है, उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं होता। ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान तो है, उसे कुछ तो बेसिक नॉलेज तो है, बल भोगी है, परंतु योग तो है ना, वो तो हठ योगी होते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले। जबरियन योग लगाते हैं, तुम सहज राजी होगी, तुम सहज राजी होगी हो इसलिए तुम राजा ही ले लेंगे। वो हठ योगी है इसलिए उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती। तुम जब राजा ही लेंगे तो बाकी सब खत्म हो जाएगा, फिर योग की दरकार नहीं रहेगी। कृष्ण को भल योगेश्वर कहते हैं, परंतु वो तो योगेश्वर है नहीं। उनको ईश्वर ने राजयोग सिखाया, कब सिखाया? उससे पहले के जन्म में। ईश्वर ने कृष्ण को राजयोग सिखाया पहले के जन्म में, उस समय ये क्या थे? पहले के जन्म में कृष्ण क्या थे? ब्रह्मा को राजयोग ईश्वर ने सिखाया? नहीं सिखाया। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा की सोल ने राजयोग सीखा। अभी भी बाबा आया हुआ है, इसलिए आया हुआ
है,
ले जाने के लिए आया हुआ है। देवान छुड़वा कर आत्म की स्थिति में सेट करके ले जाएगा, तो कोई भी चीज में ममत्व में रहे। कब जावेंगे? जब आत्मा मोह ममता से परे हो जावे, देह और देह के पदार्थों से डिटैच हो जावे। तुम ये भी जानते हो कुछ भी रहना नहीं है, जो कुछ रहना नहीं है और पहले से पता है तो डिटैच बुद्धि क्यों नहीं होती? ममत्व तो क्यों बना रहता है? जानते भी हो कुछ भी नहीं रहेगा, ना ममत्व रहेगा। बाप तो बताते हैं, बल कुछ भी रहेगा नहीं, लेकिन तुम डरो मत, कुछ नहीं रहेगा लेकिन तुम्हें डरने की दरकार नहीं है। कोई भी चीज में ममत्व मत रखो, ममत्व मिटाने के लिए ही यह कहलवाते हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका ही था, आपका ही है, सब कुछ दे देते हैं। जब सब कुछ दे देते हैं तो कहेंगे अच्छा ट्रस्टी होकर के डायरेक्शन पर चलो, ट्रस्टी होकर के चलेंगे तो तुम्हारा ममत्व नहीं रहेगा, नहीं तो अंतकाल में जो फलानी फलानी चीजों में बुद्धि हो जाता है तो फलानी चीजें सिमरे वैसे चिंतन में जो मरे तो फिर वैसा ही जन्म मिल जाएगा। अपना शरीर भी याद न पड़े, कुछ भी याद न पड़े, कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। जब कुछ याद नहीं पड़ेगा तो विजयमाला का दाना बन सकते हैं। ममत्व तो कोई में रखा तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम जो भी पढ़ते हो जानते हो ये नई दुनिया अमर लोग के लिए है, सो तो अमर लोग की पढ़ाई बाप के बगैर कोई पढ़ाई नहीं सकते हैं। उस दुनिया में तो इसी दुनिया की पढ़ाई पढ़ाते हैं और बाप तो अमर लोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी प्रारब्ध मिलेगी नई दुनिया में, जैसे कोई भी चीज ममत्व में न रखो तो तुम बहुत ऊंच पद पाओगे, फिर और कोई को भी सिखाई सकेंगे। राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है, तुम मैसेंजर हो तो जो भी तुमको मिलता रहे उनको बताते जाओ, उनमें से कोई अपने कुल का होगा तो उनको तीर लग जाएगा, अपने कुल का नहीं होगा तो उतना उठा ही नहीं सकेंगे। राजधानी बहुत बड़ी बननी है और वो भी योग बल से बनेगी। क्या
योग बल
से? वाचा के बल से या भागदौड़ के बाहुबल से राजधानी नहीं बनेगी, योग बल से तुम अपनी राजधानी लेते हो। तुम समझ सकते हो कि इन देवताओं ने लड़ाई करके राजाई प्राप्त नहीं की, तुम भी पढ़ाई से भविष्य के लिए राजाई ले रहे हो। वहां की नदियां आज बहुत स्वच्छ होंगी और यहां जो भी नदियां हैं उन सब में कचरा पड़ता है, हद की बात, भेद की बात क्या? भेद की नदियां कौन सी? जो भी बेहद की नदियां हैं जो पहाड़ की ऊंची स्टेज से आती है और फिर नीची स्टेज में बह करके अंत में सागर में गिरती है, उनमें बीच में दृष्टि वृत्ति का कृति का कर्मेंद्रियों का कचरा पड़ता है। जब नीचे की युग में आती है तो कचरा पड़ता है। पहले वो नदियां बहुत स्वच्छ थी, अभी भी नई राजधानी होगी तो कचरा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। क्या इस दुनिया की जो राजाई है उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है जो नई दुनिया है जिसमें नदियां बहुत स्वच्छ होंगी, तो ऐसी सर्विस करने के लिए बच्चों को बहुत शौक चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, इसलिए आप सर्विस ही सर्विस में लग जाना चाहिए। उसके लिए अभी तुम योग बल का अभ्यास करते रहो और ज्ञान रत्नों का दान देते रहो। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24 अप्रैल 1967। गीत चलाया ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग के और जो भी सत्संग होते हैं, उन सत्संगों में तो सभी ही गए होंगे, या तो कहेंगे बोल सत्य वाहे गुरु, या तो अपने गुरु को नाम बता देंगे, या तो बाप को और बच्चों को कुछ भी कहने की दरकार नहीं रहती, एक ही बार कह दिया, बार बार कहने की जरूरत ही नहीं। बाप भी एक ही है और उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? एक बाप कहते हैं मां मैं कब याद करूं, एक बार सुन लिया कि मां मैं कब याद करूं, बस नया तो कोई यहां आ नहीं सकता। पहले सीखे कि जो कहते हैं मां मैं कब याद करो वो कौन है, सीख करके फिर यहां बैठे। हम जब बाप के बच्चे हैं तो उनको याद करना है, और ये बात भी तुमने अभी जानी है। बाप द्वारा ही तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का बाप एक ही है, दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि हम उस बाप के बच्चे हैं। किस बाप के?
आने वाले
पास्ट का भी हो सकता है,
भविष्य
का भी हो सकता है,
पास्ट
का क्या? पास्ट में कैसे गए उस बाप के बच्चे हैं?
सन 36 में
जो बीजारोपण ज्ञान का करने वाला बाप था, हम उस बाप के बच्चे हैं, और वो ही बाप दोबारा जन्म लेकर के फिर प्रत्यक्ष होता है मनुष्य शक्ति का पिता, जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके गॉड फादर का पार्ट बन जाता है। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। सभी माने कौन कौन? जो भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो सब उनको गॉड फादर कहेंगे। अभी भी फादर कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं और हम उनके बने हैं। बाबा इनमें आए हैं, बहुवचन क्यों कर दिया? इनमें आए हैं और उनके बने हैं। किनके? बाबा इनमें, इनमें माने किनमें?
रामकृष्ण
की आत्माओं में आए हैं और हम उनके बने हैं। शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु जो और सब है और तुम्हारे में अंतर क्या है?
बाप को जानते नहीं,
वो दुनिया वाले बाप को जानते नहीं, और तुम जानते हो। जानते हो कि बाबा ही आकर पद से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चे उठते बैठते जानते हो कि हम आत्मा हैं, अब को बाप ने फरमान किया है कि हमको याद करो और मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। साफ चिल्लाते रहते हैं पति तो पावन आओ, हम पति तो बन गए। आत्मा ही तो कहती है, देह तो नहीं कहती है, और आत्मा है शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। नहीं लेती, कम जन्म नहीं लेती क्या? 84 जन्म भी आत्मा लेती है। माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले हैं वो ही 84 जन्म लेते हैं, परंतु शरीर तो पार्ट बजा करके चला जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूँ। अभी हमने ये अंतिम 84 जन्म लिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है। अभी बाप ने आत्मा को याद दिलाया है अंतिम 84वें जन्म में कि तुमने 84 जन्म लिए, तुमने 84 के चक्र में पार्ट बजाया है ना। ये बुद्धि में रखना है कि हम इस रंगमंच में एक्टर्स हैं और अभी बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है। बनाया है तो आदि मध्यंत का ज्ञान भी दिया है। बाप को ही सब बुलाते हैं, अभी वो कलयुगी कहते रहते हैं कि भगवान आओ और तुम तो संगमी भी बन गए, तुम बुलाते नहीं हो, तुम अपन को संगमी की ब्राह्मण कहते हो कि बाबा आया हुआ है। वो बुलाते रहते हैं और तुम कहते हो आया हुआ है, तो इस संगम युग को तुम ही जानते हो, वो तो जानते नहीं। और ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, पुरुषोत्तम युग भी तब होता है जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। कलयुग का अंत हो और सतयुग का आदि हो, दोनों के बीच में संगम युग होता है। सतयुग में सत्य पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग है ही सत्य खंड, कलयुग है ही झूठ खंड। सतयुग में जो होकर के गए हैं उनके यहाँ चित्र मिलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो सबसे पुराने से पुराना चित्र कौन सा है? इनसे पुराना चित्र कोई भी नहीं होता, जरूर जो होकर के गए हैं उनके ही चित्र होते हैं। ऐसे तो बहुत मनुष्य हैं जिनके चित्र और मूर्तियां बनाते रहते हैं, परंतु उनकी पूजा नहीं होती। ये गणेश है, ये हनुमान आदि कोई होकर छोड़े ही गए हैं। ये तो सब भक्ति मार्ग में मनगढ़ंत चित्र बैठ बनाए हैं। तुम जानते हो कि वास्तव में कौन कौन होकर के गए हैं? जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र बनाया है, तो ऐसी भुजाओं वाली कोई थोड़े ही हो सकती है। कौन सी भुजाओं की बात है? स्थूल भुजाओं वाली कोई होती है इतनी? फिर भुजाएं कौन सी? उनके कार्य में सहयोगी बनने वाली जो आत्माएं हैं वो उनकी भोजाओं के रूप में दिखाई है। तो अम्बा को भी भोजाएं तो होंगी ना। तो मनुष्य तो जाकर के ऐसे ही हाथ जोड़ते रहते हैं। पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए दिए, दिखाते हैं आकासुर बकासुर उनकी कितनी भयंकर शक्ल दिखाते हैं। अब ऐसे कोई मनुष्य आकासुर बकासुर होते थोड़े ही हैं। पुलिस के जो सिपाही होते हैं वो लड़ाई आदि में ड्रेस ऐसी पहनते हैं जो भयंकर रूप बन जाता है। अभी हैं तो सब मनुष्य। किसकी किसकी बात बताई? गणेश की, हनुमान की, काली की, दुर्गा की, अकासुर की, बकासुर की, ये किस समय की बातें हैं? संगम युग में भी जब लड़ाई होती है जोर से, तो लड़ाई के समय की ये जानवरियत के चित्र बनाए दिए। तुम ब्राह्मणों को तो लड़ने की दरकार है ही नहीं। सिपाही लड़ते हैं तो भयंकर रूप बनाए देते हैं, वो तो वो भी मनुष्य हैं। तो मनुष्यों के सिर पर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें करते हैं तो रूप बदली हो जाता है। तो ये जो ढेर सारे चित्र हैं मनगणंत, ये वास्तव में कोई है नहीं, परंतु उनका चरित्र दिखाया गया है ऐसे चित्र बना करके। तो उन चित्रों में वो भयंकर रूप दिखाई पड़ता है, कहीं हनुमान का, कहीं गणेश का, कहीं आकासुर का, कहीं बकासुर का, कहीं महाकाली का, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। क्या जो इस तरह के चित्र बनाने वाले हैं, उनको पूजने वाले हैं, उन्होंने फाउंडेशन कहाँ डाला? यहाँ संगम युग में उनका फाउंडेशन, उनके चिंतन में ज्यादा चलते हैं वो। तुम्हारे चिंतन में ये सब चलने वाले नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में इनका महिमा आने वाली नहीं है, वो सब भक्ति मार्ग के हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, और जो जानवर होते हैं वो जानवरों की ही संतान होते हैं। आकासुर बकासुर किसकी संतान होंगे? आकासुर बकासुर की ही संतान होंगे। यहाँ मनुष्य कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई लूले होते हैं, कोई लंगड़े होते हैं, ये पूर्वजन्म के हिसाब किताब से बनते हैं ना। अब सतयुग में तो ऐसे कोई होंगे नहीं। तुम सतयुग को भी जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। यहाँ की ड्रेस देखो हरेक की कैसी कैसी है, वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब होते हैं एक जैसे। तुम जितना सतयुग के नजदीक होते जाएंगे, अपनी राजधानी के नजदीक होते जाएंगे, वहां की ड्रेस आदि का भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। देखते होगे हम ऐसे ऐसे स्कूल में ये करते हैं, और देखें भी वो जिनका बुद्धि होगा अच्छा होगा, अपने शांति धाम और सुख धाम की वो याद करते हैं। बाकी अपना अपना धंधा धोरी तो करना ही है, भक्ति में भी धंधा धोरी तो करते ही रहते हैं, फिर कोई न कोई को याद करते रहते हैं। जैसे मीरा है, कितना याद करती थी। मीरा कृष्ण की पुजारिन थी, ध्यान में जाती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, है ये सब भक्ति। तो ज्ञान ये है क्या? भक्ति सिवाय शिव बाबा के किसी और को याद किया तो वो सब है भक्ति, और शिव बाबा को याद किया पहचान कर तो ज्ञान है। तो मीरा को कहेंगे भक्ति का ज्ञान था क्या? मीरा की बुद्धि में भी भगवान कौन था? कृष्ण था। गीता का भगवान भी उनकी बुद्धि में कृष्ण था, कोई शिव शंकर बोले ना तो उनकी बुद्धि में नहीं। था नहीं। तो ये तो समझ की बात है क्या कि माम एकम याद करो तो ज्ञान, और माम एकम के अलावा कोई दूजम दूजम को याद किया तो अज्ञान भक्ति हो गई। 24 अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो कोई तुमको यह नहीं कहेंगे कि तुम विश्व के मालिक बनोगे, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि तुम जानते हो ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, और ये ईश्वरीय पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, अमर लोग के लिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अमरनाथ पर नहीं सुनाई, लेकिन ऊंची स्टेज में रह करके जो बातें सुनाई गई वो सच्ची कथा है, और भक्तों ने तो शिव शंकर को मिलाई दी है क्या? उन्होंने क्या समझ लिया है कि शंकर कोई अलग नहीं है, शिव कोई अलग नहीं है, जो शिव है वो ही शंकर, जो राम की आत्मा है वो ही शिव बन जाती है, पुरुषार्थ करके, जैसे जैनियों ने समझ लिया है। जैनी लोग भी यही समझते हैं कि पुरुषार्थ करके मनुष्य तीर्थंकर भगवान बन जाता है, 24 अवतार हुए भगवान के ऐसे बताए देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि मनुष्य तो मनुष्य ही है, मनुष्य तन में साधारण तन में भगवान प्रवेश करता है, बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य जो है भगवान हो जाता है। आजकल तो मनुष्य अपने ऊपर भी नाम रखवा लेते हैं, शिव शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, नाम रखवाते हैं ना। अब ये सब बात है कहाँ की? कैसे, किसको फॉलो किया है?
भक्ति मार्ग वाले,
भक्ति मार्ग वालों ने फॉलो किसको किया जो अपने ऊपर राम राम कृष्ण शिव शंकर राधा कृष्ण ऐसे नाम रखवा, सीताराम ऐसे ऐसे नाम रखवा लेते हैं।
कृष्ण पंत
है,
कृष्ण पंत वाला
नहीं, जब कृष्ण की सोल मुकर रथ में शिव के साथ प्रवेश करती है उस समय की यादगार बन गई। अभी बाप तुम बच्चों को सब बातें समझाते हैं, बाप समझाते हैं तो यह भी सुनते हैं, कौन? कृष्ण की सोल। बाप बिगर सृष्टि की आदि मध्यंत का राज कोई बता ही नहीं सकता है, ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृह व्यवहार में रहते हो वैसे ये भी रहता था, ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे आदि होते हैं पर कुछ नहीं, बाप इस रथ पर सवार होकर के आते हैं और बच्चों के पास ही आते हैं, ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो बैल पर सवारी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। क्या क्या उल्टा समझ लिया है? कि बैल पर सवार होते हैं। अब सिर्फ बैल पर कैसे सवार होगा? बैल तो जानवर है, जानवर सवार होकर के जानवर में जानवर की भाषा सुनाएंगे क्या? तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया। मंदिर में कभी बैल होता है क्या?
नहीं,
कृष्ण तो है ही सभी उधारी। जो कृष्ण है वो थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। कितना रोला लगाइए, मैंने फिर बैल कौन हुआ, उस पर बैठने वाला कौन हुआ? कृष्ण हुआ, बैल हुआ, और उस पर बैठने वाला शंकर हुआ, और शिव शंकर में प्रवेश करता है, बैल में प्रवेश नहीं करता। कृष्ण तो है शरीरधारी, वो थोड़े ही बैल पर बैठेगा। भक्ति मार्ग में कितना रोला दिखाई दिया, मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं, कुछ भी समझते तो है नहीं, परंतु अहंकार कितना है। कितने बड़े बड़े टाइटल लेकर के बैठे हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। आप वो टाइटल बाप को जाना नहीं तो टाइटल किसी काम के नहीं, उनको अपनी भक्ति मार्ग का ही नशा है और तुमको ज्ञान मार्ग का नशा है। जानते हो बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं संगम युग पर, तुम तो इसी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से तुम जानते हो कि हम संगम युग ब्राह्मण हैं। क्या दुनिया वाले भी बुद्धि से नहीं जानते हैं क्या कि हम संगम युग है? वो क्या समझते हैं? हम कलयुग में, और तुम समझते हो वो तो कलयुग में, लेकिन बुद्धि से तुम समझते हो कि हम संगमयुगी ब्राह्मण। तो तुमको ज्ञान मार्ग का नशा है। सब मनुष्य कलयुग में और तुम संगमयुग पर हो, तो ये अनुभव की बात है। बुद्धि कहती है कि हम कलयुग से अब निकल आए हैं। क्या अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो कलयुग से निकल आए, और अभी भी अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कलयुग युग। कलयुग का मतलब ही है कलह कलेश युग। जो बाप के बच्चे बने होंगे वो सब कुछ किसके ऊपर छोड़ेंगे?
बाप के
ऊपर छोड़ेंगे। बाप आया हुआ है, धर्म राज बन के सबका दरबारा न्यारा कर डालेगा, तो हमें लड़ाई लड़ने की क्या दरकार? तो तुम अभी कलयुग से निकल है कलेश के युग, कलयुग से निकल आए हो। जानते हो बाबा आया हुआ है, अब जरूर ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं, और कोई की बुद्धि में ये बातें ठहरती नहीं है। और कोई माने कौन है? तुम जो 84 जन्म लेने वाले आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है? जो कम जन्म लेने वाले हैं वो ना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे और ना लड़ाई झगड़ा करना छोड़ेंगे। तो तुम्हारी अनुभव की बातें है। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही भारत में रहने वाले हैं, परंतु वो कलयुगी है और तुम संगमयुगी हो। बाप कहेंगे हम भी संगमयुग पर आता हूं। मंडल में बातें हैं, ये संगमयुग बहुत छोटा है, इनको 60-70 वर्ष मिले हुए हैं। जब तक विनाश हो क्या साठ सत्तर वर्ष मिले हैं जब तक विनाश हो कब होगा विनाश ये साठ सत्तर वर्ष जो बोले हैं वो संक्षेत्र के लिए तो लागू नहीं होते अब के लिए लागू होते हैं 2036 में से साठ सत्तर वर्ष घटा लो
2036
साठ वर्ष घटाए तो कितना आया
छत्तर
छत्तर आ गया इनको साठ सत्तर वर्ष मिले हुए हैं पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है कब से हुए पुरुषोत्तम संगम युग ये साठ सत्तर वर्ष पूरे होंगे और विनाश हो जाएगा स्थापना भी हो जाएगी बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश जरूर होना है तुम्हारे में भी कोई थोड़े ही जानते हैं अगर जानते हैं कि विनाश होने वाला है जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करेंगे अपनी तैयारी करने में लग जाएंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्या जैसे राजा परीक्षित को जब पता चला कि सात दिन में हमारी मौत होने वाली है तो एक एक सेकंड की उनके टाइम की वैल्यू हो गई तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा विनाश होने वाला है वो तो अपनी तैयारी करने में लग जाएंगे अपना बैग एंड बैगेज समेट लेंगे बाकी थोड़ा समय है तुम जानते हो अगर भूख भी मरेंगे तो पहले बाबा फिर बच्चे भूख मरने का भी अगर टाइम आएगा अकाल पड़ेगा दुनिया में तो पहले बाबा का नंबर लगेगा फिर
बच्चे हम खाए
तुम शिव बाबा खाएंगे नहीं खाते हो ब्राह्मण भोजन बनाते हैं ना इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है पवित्र ब्राह्मण है याद में रह करके भोजन बनाते हो और सिवाय तुम ब्राह्मणों के बाबा की याद में रह करके कोई भोजन बना ही नहीं सकते वो ब्राह्मण थोड़े ही है वो ब्राह्मण थोड़े ही है जो ब्रह्मा भोजन खाते हो क्यों
उधर ब्रह्मा नहीं
ब्रह्मा नहीं है और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा भी
नहीं है
वो शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं जानते ही नहीं है तो शिव बाबा का भंडारा ये है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसमें मेहनत है योग की बात है ना गपोड़ा नहीं कर सकता ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मैं सदा योग में हूँ बस 60% योग में हूँ कोई भी ऐसा कह नहीं सकते कि हम इतनी याद में रहता हूँ योगी हो तो ज्ञान भी चाहिए योगी किसी को भी देखेगा तो कैसी भी अशांत आत्मा हो उसको देखने से ही शांत कर देगा इतना युग वाला आया है में ही सन्नाटा हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, सब मिलकर याद में बैठते हो तो सन्नाटा हो जाता है ना। अब यहाँ तो खास प्रैक्टिस कराई जाती है। जब प्रैक्टिकल दुनिया में मारा मारी चलेगी तो उस समय वहां प्रैक्टिस करने बैठेंगे क्या संगठित होकर के? वहां तो जिसने जितनी ताकत भरी होगी, जितना जितने प्रैक्टिस की होगी, वो प्रैक्टिस काम आती रहेगी। इतना समझाते हैं फिर भी कोई याद में ठहरती नहीं, कहां कहां बुद्धि भागती रहती है। तो ऐसी जिनकी बुद्धि भागती रहती है वो फिर नुकसान कर देंगे। यहाँ बिठाना उनको चाहिए जो अपन को समझे कि हम ड्रिल टीचर हूँ। बाप की याद में बैठे बुद्धि का योग और कोई तरफ जा भी नहीं। अगर सिखाने वाले टीचर का बुद्धियोग ही और तरफ जावेगा तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? ऐसी याद हो जो सन्नाटा हो जावे तो वो तो असली बन जाते हो, क्योंकि बाप की याद में रहते हो। तुम्हारी सच्ची याद है। सन्यासी भी तो शांति में बैठते हैं, परंतु वह कोई उनकी रियल याद नहीं है। वो कोई को फायदा नहीं दे सकते, वो सच्ची को शांत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बाप को जानते ही नहीं। बाप शांति देवा कहा जाता है, वो तो ब्रह्म को ही भगवान समझ लेते हैं। कौन? दुनिया में सन्यासी भी ब्रह्म को भगवान समझते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते हैं, परंतु वो ब्रह्म तो भगवान है नहीं। तुमको तो श्रीमत मिलती है कि माम एकम याद करो, इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम 84 जन्म नीचे गिरते आए हैं। पापात्मा बनते आए, कैसे धीरे धीरे कलाएं कम होती गई, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती है देखने से, फिर लीक बचती है। अभी तो कोई भी संपूर्ण नहीं बना है और जल्दी कोई संपूर्ण बनने वाले भी नहीं है। कब बोला?
67
में। तो 67 में बोला और 68 में क्या ब्रह्म संपूर्ण हो गए?
नहीं।
कोई भी संपूर्ण नहीं बना है और नहीं जल्दी बन सकते हैं। अभी तो टाइम पड़ा है, तुमको सब साक्षात्कार होता जाएगा। आत्मा कितनी छोटी है उनका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बच्चियां बतावेंगी कैसे कि इनकी आत्मा में लाइट कम है, इनकी आत्मा में लाइट जागती है। 24 अप्रैल संसद की वाणी का तीसरा दिन। आत्मा कितनी छोटी है परंतु लाइट किसी में ज्यादा है और किसी में लाइट कम। ये भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं क्या? ये भी आगे चल करके बुद्धियोग से सबको मालूम पड़ता जाएगा किसकी आत्मा में कितनी फोर्स है। दिव्य दृष्टि से भी आत्मा को देखते हैं। ये भी रामानुज है। साक्षात्कार कराना ब्राह्मण विनोद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब कुछ ड्रामानुसार चलता रहता है। आदि में कितने भागे, ये सब ब्राह्मण विनोद था। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। आत्मा कितनी छोटी है, जो पतित बनती है फिर पावन बनती है वंडरफुल बात। इसको कुदरत कहते हैं, और बाप से भी तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की। हम कितनी इतनी छोटी आत्मा और उनमें इतना पार्ट बना हुआ है, और वो भी अविनाशी पार्ट है, आत्मा अविनाशी। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते जो बाप समझाते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, वो तो पत्थर बुद्धि। इतनी छोटी आत्मा पत्थर बुद्धि से फिर कैसे पार्श्व बुद्धि बनती है, ये भी तुम्हारी बुद्धि है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पारसनाथ बनाते हैं, ये अभी तुम समझते हो। हम आत्मा पहले पारस बुद्धि थे, अभी हमारी पत्थर बुद्धि हो गई है। जब पत्थर बुद्धि बनते हो कितना भी ज्ञान सुनते रहो लेकिन धारणा नहीं होती। कितने साल से ज्ञान सुनाते चले आए, 70 साल से ज्ञान सुनते चले आए, और अभी भी धारणा में पक्का नहीं हो रहा है, तो कैसी बुद्धि हुए? कहेंगे पत्थर बुद्धि है। आत्मा कितनी छोटी, तो इन्हें बातों को बुद्धि में स्मरण करना चाहिए। आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगाती है, और कितनी आत्माएं हैं, वो आत्माएं पार्ट बजाते हैं रंगमंच पर, वो भी एक्टर्स होते हैं, वो हद के एक्टर्स हैं, और तुम वो भी हद के हद के एक्टर्स माना? जो हद के एक्टर्स हैं, वो अपन को देह समझ करके पार्ट बजाते हैं, और तुम भी हद के एक्टर हो आत्मा, जो तुम अपन को आत्मा समझते हो और जानते हो कि हमने इस रंगमंच पर 84 जन्मों में 84 तरह के कपड़े बदल करके 84 बार पार्ट बजाया, तो तुम बेहद के एक्टर हो। इन ज्ञान की बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चे समझ रहे हो, बुद्धि में ये चिंतन चलता रहता है कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बन रहे हैं, तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए। आत्मा को पहचान मिली है परमात्मा बाप की। मनुष्य थोड़ी जानते हैं आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, है कितनी महीन बात है, और इन बातों को समझाने में भी बहुत मेहनत लगती है। क्या ये आत्मा किस कैटेगरी की है, और आत्मा का बाप परमात्मा कौन है? बहुत महीन बात है, दो बाप का भी समझाना पड़े। कौन कौन से दो बाप?
बेहद का बाप,
आत्मा का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं, आत्मा का बाप और मनुष्यों का बाप। तुम आत्मा बाप को याद करते रहो तो पूछना पड़े कि तुम अपन को देह समझते हो कि आत्मा समझते हो। अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप कौन है?
परमात्मा
है, कौन है?
शिव ज्योतिर्मय।
नाम रूप देश काल बताओ। आत्मा बिंदी है, बिंदी आत्मा चौरासी का चक्कर कैसे लगाती है? आत्मा का तो विनाश होता नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर के तुमको ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता हूं, फिर तुम भूल कैसे जाते हो? कैसे भूल जाते हो? जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो दो दो तरह की बातें निकलती रहती हैं और तुम उन बातों में भरमा जाते हो, अपने स्वरूप को भूल जाते हो। तुम आकर के फिर तुम आकर के ये गोई पॉइंट्स अभी बाप से सुनते हो, ये कोई पॉइंट्स, ये कोई ज्ञान के पॉइंट्स शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्मा बिंदी हूं, हम भी बिंदी हूं, बाबा भी बिंदी है। लौकिक दृष्टि तो बाप भी बड़ा, टीचर भी बड़ा, गुरु भी बड़े मिलते हैं, और यहाँ तो एक ही बिंदी, बाप के रूप में भी बिंदी पढ़ाने वाला, टीचर के रूप में भी बिंदी, और सदगुरु के रूप में भी वो बिंदी रूप में रहती है, बड़ा रूप धारण नहीं करती। निराकारी निर्विकारी और फिर निरहंकारी भी रहते, तो ये तो एक ही बाप है। दुनिया में तो बाप अलग होता है, तो टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है, और यहाँ एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही बिंदी। अभी तुम जानते हो कि हमने सारा कल्प देहधारियों को याद किया, अभी अभी सिर्फ बाप कहते हैं कि मां में कम याद करो। इतनी महीन बात और कोई बता ही नहीं सकता। क्या महीन बात?
देहवान छोड़ने,
हाँ, कि देहवान छूटेगा तो महीन बाप याद आएगा, देहवान छूटा नहीं
तो महीन,
तो बाप की महीनता बुद्धि में बैठेगी। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे बुद्धि को कितना महीन बनाता हूँ। कैसे बनती है बुद्धि महीन? देह को न समझे, देह तो बड़ी चीज है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन न करें, किस पर करें? आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करें, और आत्मा के बाप के ऊपर ध्यान जमे, तो उससे क्या होगा? सूक्ष्म को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। कितनी महीन बुद्धि बनाता हूं, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात थोड़ी है। ये भी कोई ख्याल नहीं करते हैं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। यही विश्व के मालिक थे ना, और तो कोई नहीं था ना? हिटलर, नेपोलियन, ये कोई विश्व के मालिक तो
नहीं
बन नहीं सके। तो ये कैसे बने? मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, और तुम भी जानते हो नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। क्या
विश्व के मालिक कैसे
बने? ये विश्व के मालिक कैसे बने? नया कोई इन बातों को समझ नहीं सकता है। पहले पहले मोटे रूप में समझा करके बाद में फिर महीनता में ले जाना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बड़ा आदमी आया तो पहले ही उसको सारा विस्तार सुनाना शुरू कर दिया, तो उसकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, भाग जाएगा। पहले मोटी बात समझाओ, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा
बिंदी
बिंदी।